وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. والا ہمارے شیخ اور مرشد شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فرمایا کہ اگر کبھی ضرورت اور انتظام کی وجہ سے تم کو کسی اونچی جگہ پر بٹھایا جائے تو اپنے کو بڑا نہ سمجھنا، یہ مراقبہ کرنا کہ تنکا جو ہے پانی اور دریا کی ظاہری سطح پر ہوتا ہے اور موتی جو ہوتا ہے وہ دریا کی گہرائی میں ہوتا ہے. لہذا جو حضرات نیچے بیٹھے ہیں ان کو موتی سمجھو اور اپنے کو تنکا سمجھو. اب میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ اگر گدھے کو پہاڑ پر چڑھا دیا جائے تو شیر تو نہیں بن جائے گا. ماتا اللہ صاحب اس کی ایکو چل رہا ہے میرے خیال میں، ایکو کو بند کروا دیں. شیخ کی در کو بند کر دیں، آواز گونج رہی ہے نا. مول صاحب آؤ نا، آگے بیٹھو نا، آگے بیٹھو. آپ حضرت آگے آ جائیں. اور ساتھی کیا ہے آپ کے؟ اچھا دوسرے ہو رہے، ایک اور تین تیسرے. تو میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ اگر گدھے کو پہاڑ پر چڑھا دیا جائے شیر تھوڑی بن جائے گا، بلکہ حضرت والا نے ہنس کر اور مسکرا کر فرمایا گدھے کا گدھا ہی رہے گا. فرمایا اگر کبھی انتظامن اور ضروراً بٹھایا جائے تو اپنے کو بڑا نہ سمجھے اور اوپر بیٹھ کر ایک سنت بھی ادا کر لے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا اذا سعیدنا کبرنا، کہ جب ہم اوپر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکاۃ شریف کی شرح مرقات کے اندر اس کی یہ حکمت لکھی کہ دیکھو جب اوپر چڑھتا ہے تو انسان اپنے کو ذرا اونچائی پر جاتا ہے تو کہتے ہیں بڑا ہو گیا، یعنی کہو اللہ اکبر کہ میں بڑا نہیں ہوں، بڑے کون ہیں؟ اللہ. اس نے فوراً اس بڑائی کے جو جراثیم ہے اس پر ڈی ڈی ٹی چھڑک دیا کہ ہم بڑے نہیں، بڑے تو اللہ ہے. ایک بات. دوسری بات میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں اگر کوئی تمہاری تعریف کرے تو تین باتوں کو یاد رکھو. نمبر ایک بات، تین کام کرو. اگر کوئی تمہاری تعریف کرے تو تین کام کرو. نمبر ایک کام یہ کہ اپنے کو ایسا مت سمجھو کہ جو آدمی ہماری تعریف کر رہا ہے اس نے تو ہماری زیادہ سے زیادہ ایک نیکی، ایک نیک عمل ایک دیکھا ہوگا، لیکن ہم اپنے دس گنا خود جانتے ہیں. اس لیے فرمائے اپنے کو ایسا مت سمجھو. فلا تزکو انفسکم، اپنے کو پاک مت سمجھو. ایک کام. نمبر دو کام یہ کرو کہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالی آپ کا کتنے کرم اور مہربانی ہے کہ آپ نے ایک میرے مسلمان بھائی کے دل میں میرے لیے عزت ڈال دی. میں ایسا ہوں نہیں لیکن میرا مسلمان بھائی مجھ کو ایسا سمجھ رہا ہے. یہ آپ شکر ادا کریں. اور لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے ضرور بالضرور اور دوں گا. لام تاکید بانو نے ثقیلہ کے ساتھ ضرور بالضرور اور دوں گا، لہذا اس چیز کے اندر اضافہ ہوگا. دو کام، اور تیسرا کام کیا کرے؟ یا اللہ میں ایسا ہوں نہیں، آپ اپنے کرم سے اس کے نیک گمان کے مطابق مجھ کو بنا دیجئے. کیا سبحان اللہ! تیسری بات کیا؟ کہ اللہ میں ایسا ہوں نہیں. مہمان کا فون آیا تو وہ کئی راستے میں ہے نا، میں آپ کو دور، آپ کی دوری کو اس لیے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ انتظامی وجہ سے، ورنہ آپ سے دور رہنا تو دیکھیے نا صاحب، محبوب دور ہو کیسے برداشت کرے گا. لیکن انتظامن تو تیسرا کام کیا کرے؟ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میں ایسا ہوں نہیں، یہ میرا مسلمان بھائی جیسا میرے بارے میں نیک گمان کر رہا ہے میں ایسا ہوں نہیں، آپ اپنے کرم سے، تین ہو گئے نا یہ ماشاءاللہ، میں ایسا ہوں نہیں لیکن آپ اپنے کرم سے مجھ کو ایسا بنا دیجئے، بلکہ اس سے بڑھ کر بنا دیجئے. لہذا جب کوئی نیک گمان سے تعریف کرے تو تین کام، نمبر ایک کام اپنے کو ایسا نہ سمجھے، نمبر دو کام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ کا کتنا شکر ہے، میں اس قابل تھا کہ مجھے جوتے مارے جاتے لیکن یہ میری تعریف کر رہا ہے. حضرت والا میرے شیخ دعوت برکاتم نے سنایا کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے راکھ پہن دی تو فرمایا الحمدللہ. تو شاگرد جو مرید ساتھ تھے فرمایا کہ حضرت اجازت دے کہ ہم اس کو راکھ پھینکنے والے کو اس کے دانت توڑ دے. فرمایا نہیں، صبر کرو. تو پوچھا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس نے آپ کے اوپر راکھ پھینکی اور آپ فرما رہے الحمدللہ، یہ راز سمجھ میں نہیں آیا. ان اللہ والوں کی سوچ کو دیکھیے اور ان کے سامنے جو حقیقت منکشف ہوتی ہے اللہ تعالی کے قرب اور تعلق کی. تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو سر آگ برسانے کے قابل تھا میں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس پر صرف راکھ پھینکی گئی. اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ میرے مسلمان بھائی کے دل میں آپ نے میرے لیے عزت ڈال دی، اب وہ میری تعریف کر رہا ہے، نیک گمان کر رہا ہے. اور تیسرا اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میں ایسا ہوں نہیں، آپ اپنے کرم سے مجھ کو ایسا بنا دیجئے بلکہ اس سے بڑھ کر بنا دیجئے. ستر کے زمانے میں میرے پیارے مرشد میرے شیخ مری تشریف لائے تھے اور حضرت والا کے یہاں پر اشعار بھی ہوئے تھے اور نعت شریف کے اشعار، ستر کے زمانے میں. وہ اشعار کیا ہے؟ رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں. یہ حضرت کے مری کے اشعار ہیں. رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، اور جب نظر آئے وہ سبز گنبد، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائیں. جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائیں. اب نہ جانا ہو، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چھپکے چھپکے یہ مانگے دعائیں. دعا مانگ رہے کہ اللہ مدینہ شریف میں موت عطا فرما دیجیے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہم مانگے تو صحیح، ہم مانگتے نہیں ہیں. در حقیقت میرے پیارے دوستو اللہ تعالی کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے لینے میں کمی ہے، ہم مانگتے نہیں ہیں. آپ تصور کریں بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر دیکھیے انسان بنا دیا، مانگا تھا ہم نے، कितनी बड़ी नेमत इंसान बना दिया। अगर आज गधा बना देते, लकड़ी लादकर पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता, डंडे भी खाने पड़ते, कितना एहसान इंसान बनाया। फिर आंखें सलामत, कान सलामत, नाक सलामत, दांत होंठ वगैरह सलामत, हाजा हाथ पांव सलामत, खाने का निजाम, हजमे का निजाम, दिल गुर्दे जिगर सर से लेकर पांव तक। हम सो रहे हैं, मस्जिद में बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हमारे जो गुर्दे हैं वो खून को साफ कर रहे हैं। ये तो जब अल्लाह ताला सबको आफियत से रखे। मेरे दोस्तों, जब गुर्दे फेल होते हैं, जब हर हफ्ते में हफ्ते के अंदर दो दो मर्तबा जाकर डायलिसिस कराना पड़ता है और खून साफ करवाना पड़ता है, तब पता चलता है कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन अल्लाह ताला का कितना करम कि गुर्दे लगाए जो काम कर रहे हैं और खून को हमारे साफ कर रहे हैं। हम बैठे बातें कर रहे हैं, एक आदमी अल्लाह ताला अपने बुजुर्गों की बात जबान से पेश कर रहा है और हमारे कान उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं और गुर्दे हमारे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने मांगा था कि अल्लाह मियां हमें आंखें दीजिएगा, हाथ पांव दीजिएगा, बगैर मांगे इतनी बड़ी नेमत दे दी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला का एहसान और करम है कि मुसलमान के घर में पैदा फरमा दिया, इतना बड़ा करम। अगर आज किसी ईसाई के घर पैदा हो जाते, ईसाई जो जहां पर वो करता है अपना इबादत वगैरह, उसको गिरजा बोलते हैं, गिरजा घर। अकबर इलाहाबादी मशरूम का शेर अभी मुझे नजर आया दूर से, तो मौलाना को मैंने शेर सुनाया कि इलाही खानाए अंग्रेज गिरजा, इलाही खानाए अंग्रेज गिरजा, ये गिरजा घर, ये गिरजा घर, ये गिरजा। उसके घर का नाम है ना गिरजा घर, इलाही खानाए अंग्रेज गिरजा, ये गिरजा घर, ये गिरजा घर, ये गिरजा। अल्लाह ताला का एहसान है मुसलमान के घर पैदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर कितना करम है कि ईमान की दौलत अपने करम से जन्नत का टिकट मुफ्त में अता फरमा दिया। जन्नत का टिकट क्या है भाई? ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने की जो तौफीक अता फरमा दी, ये ईमान का टिकट दे दिया। टिकट मिल गया हमें। सफर के दो रास्ते होते हैं। उमरे पर जाते कहते जी सऊदी एयरलाइन की फ्लाइट नहीं मिल रही, पीआईए की नहीं मिली, कहते चलो एमिरेट्स से करा दो। तो कनेक्टिंग फ्लाइट होती है और एक डायरेक्ट फ्लाइट होती है ना जना। हर आदमी कोशिश करता है डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाए, क्योंकि तो कनेक्टिंग फ्लाइट में वक्त लगता है। तो जन्नत में जाने के भी दो रास्ते हैं, एक डायरेक्ट फ्लाइट है, एक कनेक्टिंग फ्लाइट है। डायरेक्ट फ्लाइट तो यह है कि सीधा जन्नत में जाएगा और अल्लाह ताला अपने क्रम से हम सबको ले जाए, अव्वल अव्वली दाखला नसीब फरमा दे। और दूसरा दाखला यही है कि मेरे दोस्तों अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए कि जहन्नम जाके जाना पड़ेगा। वो डायरेक्ट, वो कनेक्टिंग फ्लाइट हो गई, टिकट तो मौजूद है, अब हमारा काम है उसको अपग्रेड कराए। शरीयत और सुन्नत पर अमल करें, अल्लाह ताला की बात मान ले, जो सूरत उनको पसंद है वो सूरत बना ले, जो सीरत उनको पसंद है वो सीरत बना ले, सुन्नत पर अमल कर ले। नतीजा क्या होगा? इंशाल्लाह डायरेक्ट फ्लाइट से जन्नत में जाएगा। देखिए ना, रोजेदार को कयामत के दिन अल्लाह ताला अर्श के साए के अंदर खिलाएंगे पिलाएंगे, लोग कहेंगे वाह यार ये कौन मुल्ला बैठा हुआ है, यहां भी मुर्गी उड़ा रहा है, दुनिया में भी मुर्गी उड़ाता था, यहां पर भी मुर्गी उड़ा रहा है। एक साहब ने मुझे कराची में कहा, कहने लगे मौलवी मुर्गी खाता है। मैंने कहा आपको खाना कौन खिलाता है? कहने लगे अल्लाह। मैंने कहा मौलवी को कौन खिलाता है? कहने लगे अल्लाह। मैं फिर आपको एतराज किस पर है भाई, मौलवी पर या अल्लाह पर? मौलवी को भी तो अल्लाह खिला रहा है। अब अल्लाह मियां उसको मुर्गी खिला रहा है, उसकी वजह क्या है? मेरे मुर्शिद फरमाते हैं बेचारा मदरसे में मुर्गा भी तो बनता है। पजान कहते हैं कि इसको इंसान बना दो, वो देखो तो मदरसे में मुर्गा बना हुआ बेचारा, ये तो शुगर है। कायद साहब कहते नहीं कि अंडे भी दो ताजा। अल्लाह ताला कितना एहसान, कैसा करम मेरे प्यारे दोस्तों, कितनी नेमतें। और फिर हमारे सांस चल रहे हैं, क्या हम कभी हमने सुबह उठकर ये दुआ मांगी कि अल्लाह आज सारा दिन हमारे सांस चलते रहे? दुआ मांगी या अल्लाह हमारा सारा दिन हम आंखों से देखते रहे, सारा दिन हम सुनते रहे, सारा दिन जो है हमें गिजा मिले और वो हजम भी हो जाए? क्या हम दुआ मांगते हैं? बगैर मांगे मिल रहा है नहीं मिल रहा? कितनी बड़ी बड़ी नेमतें, तो जब बगैर मांगे इतनी बड़ी नेमतें मिल रही हैं, तो मांगने पर क्या कुछ ना अता फरमावेंगे? जब इतनी बड़ी बड़ी नेमतें बगैर मांगे मिल रही है, तो फिर मांगने से क्या शर्माना भाई? मांगे हम, हमारे मांगने में कमी है, उनके देने में कमी नहीं है। तो अगर देने में कमी होती इतनी बड़ी बड़ी नेमतें, अरे सब छोड़े, ईमान की नेमत कैसी है? अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, एक एक नेमत पर शुक्र वाजिब है कि हम शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। तो अल्लाह ताला से मांगे, तो मेरे शेख क्या फरमाते हैं कि अब ना जाना हो घर हमको वापस, चुपके चुपके ये मांगे दुआएं, और हमको अपना बना लो करम से, हमको अपना बना लो करम से, मुल्तजम पर ये मांगे दुआएं। मुल्तजम काबे शरीफ के अंदर बैतुल्ला का वो हिस्सा है मुल्तजम, जो के दरवाजा काबे शरीफ के दरवाजे से लेकर और हजरे अस्वद तक की जो दीवार है वो मुल्तजम कहलाती है। क्योंकि जो लोग काबे शरीफ में, जिनको अल्लाह ताला हाजिरी की तौफीक अता फरमाते हैं, देखेंगे लोग काबे शरीफ के दरवाजे से चिपटे होते हैं, वो चिपटने की जगह नहीं है। असल चिपटने की जगह दरवाजे के बाद से लेकर हजरे अस्वद तक की जगह है, उसको मुल्तजम कहते हैं। और मुल्तजम के माने ही है, मेरे मुर्शिद ने इसका जो तर्जुमा फरमाया, लिपटने की जगह, चिपकने की जगह, चिमटने की जगह और चिपटने की जगह। जाए चिपक, जाए लिपट, जाए चिमट और जाए चिपट। कैसा कैसा तर्जुमा मजेदार, जबान चिपकने लगेगी नहीं? अब एक शेर सुनिए चिपकने पर। कभी शेख कामिल की सोहबत न छोड़ो, कभी शेख कामिल की सोहबत न छोड़ो, चिपकते चिपकते चिपक जाइएगा। जरा मिसरा बोले, चिपकते चिपकते चिपक जाइएगा, ऐसा लग रहा है ना जबान भी चिपक रही है। लिहाजा मुल्तजम के माने क्या है? लिपटने की जगह, चिपटने की जगह, चिमटने की जगह ना, और चिपकने की जगह। कैसा मजेदार तर्जुमा मेरे मुर्शिद ने फरमाया, इल्तिजाम का तर्जुमा कितना प्यारा है मुल्तजम का, सुभान अल्लाह। तो मुल्तजम कौन सी जगह? वो जगह जो दरवाजे के बाद से, मेरे प्यारे दोस्तों, हजरे अस्वद तक जो दीवार है उस दीवार से। और उसका तरीका क्या है? सीना लगाए, हाथों को ऐसे ऊपर करे, अपने गालों को लगा दे, फिर अल्लाह से दुआ मांगे, रोए और अल्लाह से, अल्लाह ताला से फरियाद करे कि अल्लाह, नफ्स और शैतान की गुलामी से मुब्तला होकर जलील और रुसवा रहूं, आप अपने करम से हमको अपना बना लो करम से, हमको अपना बना लो करम से, मुल्तसम पर ये मांगे दुआएं। मेरे प्यारे मुर्शिद, मेरे शेख एक बात और फरमाते हैं, फरमाते हैं कि देखो 40 40 लाख 50 50 लाख हाजी जाते हैं हज करने को, जी दुआ भी मांगते हैं, कोई दुआ मांगता है, एक दुकान है दूसरी दुकान मिल जाए, कर्जा अदा हो जाए, शादी नहीं हो रही शादी हो जाए, शादी हो गई औलाद नहीं मिल रही औलाद के लिए दुआ है, औलाद है फरमा बरदारी और सब काबिल बरसरे रोजगार हो जाए, ये दुआ है। गाड़ी नहीं है गाड़ी मांग रहा है, गाड़ी है और अच्छी वाली गाड़ी चाहिए, फैक्ट्री है दूसरी फैक्ट्री चाहिए, सब दुआएं मुख्तलिफ ज़ौक है मांग रहे हैं। लेकिन मेरे मुर्शिद एक बात दर्द से फरमाते हैं कि हाँ 40 लाख 50 लाख हाजियों में से कितने हाजी ऐसे हैं जो अल्लाह से अल्लाह को मांगते होंगे? ओके तलब मुख्तलिफ दहर में देखता रहा, ज़ौके तलब मुख्तलिफ दहर में देखता रहा, अख्तरे बेकरार ने तेरा सवाल कर दिया। सही बात कि जो अल्लाह से अल्लाह को मांगेगा उसे क्या मिलेगा? अरे उसे क्या नहीं मिलेगा, उसको क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी कायनात दुनिया आलम सब अल्लाह का, बस जो अल्लाह का है। इसे एक बात याद रखना चाहिए, बाकी लोग कहते हैं कि अगर हम दीन पर चलेंगे, हाफिज हमारा बच्चा हाफिज मौलवी आलिम बन जाएगा, खाएगा कहां से। बात याद रखें, मेरे मुर्शिद का शेर है, अहले उकबा को दोनों जहां मिल गए, जो आखिर पर फिदा हुए, अल्लाह पर फिदा हुए, दुनिया में मस्जिद में बैठा हूं, नस से पता चलता है कि उसको दुनिया जरूर मिलेगी, क्योंकि बगैर अपने रिस्क के इस्तेमाल के और कंप्लीट किए हुए वो मर नहीं सकता। सही है ना भाई, ये सब जानते हैं, ये मसला आम आदमी भी जानता है। तो पता ही चला, जब रिस्क मुकम्मल नहीं करेगा मरेगा कैसे, जब जिंदा रहेगा तो रिस्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन आह, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, अहले दुनिया को दुनिया फानी मिली, कि जो दुनिया के तलबगार हैं और दुनिया हासिल करना चाहते हैं, तो जो दुनिया हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया हमारी मर्जी से नहीं मिलती। सही है ना भाई, उनके उनके जो वो अता फरमाते हैं, किस्मत माने तकसीम के हैं, यानी जो उनकी जो हमारी किस्मत में यानी जो तकसीम होगी वो मिलेगा, हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, जो वो चाहते हैं वो मिलेगा। तो जब वो जो वो चाहते हैं वो मिलेगा, तो हम अपनी चाहत को उनकी चाहत पर फिदा कर दें, नतीजा ये होगा कि हम उनके फरमाबरदार कहलाएंगे, फिर उसका इनाम ये मिलेगा जो हम चाहेंगे अल्लाह वो भी अता फरमा देंगे। इसलिए याद रखना, आखिरत पर जाने वाले घाटे में नहीं है भाई। हाँ, रही बात हर चीज की मंडी, देखिए ना, रमजान शरीफ से पहले बकरे की कीमत कम होती है, रमजान शरीफ के बाद बकरे की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो जाता है कि नहीं, क्यों, मंडी लगने वाली है, ईद का बकरे ईद का जमाना आने वाला है, कीमत में इजाफा हो जाता है। तो पता चला हर चीज की जब मंडी लगती है ना, मौसम आता है, उस वक्त उसकी वैल्यू बढ़ती है। अब सितंबर में कोई मरी में आकर रहे तो होटल सस्ते मिल जाएंगे, जरा यही जून जुलाई की गर्मियों में आए, और अभी बर्फबारी का सीजन आने वाला है, होटल के रेट कितने, दुगने नहीं डबल मल्टीप्लाई होते चलाएंगे, 10 times तक भी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर जगह ना हो तो मोर देन 10 times, यानी 10 गुना से भी ज्यादा उसकी कीमतें बढ़ जाती है। क्यों, अब मंडी लग गई। आ मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो दीन का काम करने वाले हैं, जिनको हम ये समझते हैं, अरे साहब ये मुल्ला ने क्या मजा उड़ाया, मेरे दोस्तों मजे हम किस चीज को समझते हैं, ऐश हम समझते हैं किसको है, ऐश का हासिल और ऐश की तारीफ ये है कि ऐश उस चीज को कहते हैं कि जिससे हमें राहत सुकून और इत्मीनान मिले, ये ऐश का हासिल है। सही कह रहा हूं कि नहीं भाई। अब रही बात, हमारे ऐश समझा जाता है बिरयानी कोफ्ता खा लो, अच्छी गाड़ी है, LCD टीवी है 60 inch 60 इंच का, अच्छा मोबाइल है, खूबसूरत बीवी है, अच्छा मकान है, जेब में पैसे हैं, यह ऐश का हासिल। एयर कंडीशन, अगर गर्मी है एयर कंडीशन है, सर्दी है तो हीटर है, यही ऐश, किसी की ऐश के असबाब इन्हीं चीजों को कहते हैं ना। और पैसा है तो दुबई मलेशिया बैंकॉक यूरोप वगैरह के टूर लगा ले, तो कुछ ही ऐश है बस। तो सवाल पैदा होता है कि जिनके पास अच्छे मोबाइल हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छा लिबास है, अच्छा खाते हैं, बैंक बैलेंस है, कई कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स हैं, और उन वो टूर्स भी लगाते हैं, लेकिन आप उनसे पूछो भाई आपके राहत आपके सुकून और इत्मीनान का क्या हाल है, देखा उनको सुकून में, तो क्यों नहीं है, जबकि असबाब राहत उनके पास मौजूद है, फिर क्यों नहीं है सुकून उनके पास। इतना पैसा कि एक साहब ने मुझे बताया कि मरी में उन्होंने दुकान खोली और दुकान की सालाना जो किराया 10 lakh rupees, मैं तो हैरान हो गया, 10 lakh rupees, मैंने कहा यार पूरे साल में तुम कैसे पूरा करोगे, कह रहा कोई फिक्र नहीं गर्मी का सीजन आया पूरा हो गया किराया। मैंने कहा अल्लाह अकबर, मुझे हैरान की हुई, क्योंकि मैं यहाँ की मार्केट से जो है वो मैं वाकिफ नहीं, तो मुझे हैरानगी हुई कि 10 लाख रुपए और सीजन में पूरा भी हो गया, तो पता चला पैसे की तो कमी नहीं है कि वो पैसा तो पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या बात है कि एयर कंडीशन और तमाम असबाब के बावजूद सुकून क्यों नहीं है? वजह क्या है कि इन चीजों में सुकून मिलना यकीनी और लाजमी नहीं है। सुकून अल्लाह ताला ने अपनी फरमा बरदारी के अंदर रखा, यहां तक कि अगर हम इबादत भी करें लेकिन अगर गुनाहों को न छोड़े सुकून नहीं मिल सकता। देखिए ना, हीटर चला दिया, अभी अब सर्दी का जमाना आने वाला है, हीटर का जमाना आने वाला है, और हम कराची वालों का हाल तो यह, अब भी हीटर के लिए तैयार बैठे। हीटर का जमाना आने वाला है, हीटर चलाया, हीटर चला के क्या करते हैं, खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते हैं, ये खोल देते हैं कि भाई हीटर है। अरे जी साहब हीटर चल रहा है तो खिड़की दरवाजे बंद करने की क्या जरूरत है, हीटर को चाहिए कि वो खिड़की दरवाजे की ठंडी हवा का परवाह ना करे। कहते नहीं साहब ये क्या हो गया, खिड़की दरवाजों को बंद करना होगा तब हीटर की गर्मी का असर होगा। सही है कि नहीं जनाब? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इबादत करके, जिक्र करके, अपने बुजुर्गों की सोहबत में बैठ के, तबलीग में वक्त लगा के, हज और उमरा करके, माल खर्च करके, जरूरी है कि हम गुनाहों को भी छोड़ें। ऐसा ना हो कि बहुत दिन हो गए, आजकल सीजन है, जरा माल लौट का चक्कर तो लगा दे। देखे तो पूरे पाकिस्तान के लोग आए हुए थे, जरा हम भी कुछ देखें कौन कौन आया हुआ है, ऐसे ही जरा चक्कर लगाने के लिए। अभी असर के बाद मैंने मौलाना से अर्ज किया, मुफ्ती साहब से, कि जरा तबीयत हो रही है कि मैं चक्कर लगाऊं, तो मुझसे मुफ्ती साहब फरमाने लगे भाई शहर बाजार की तो जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं, कह रहे जंगल को चले। मैंने कहा हाँ जंगल को। फिर हजरत का शेर याद आया, वो शेर सुनाया मुफ्ती साहब को, आपको मुकर्रर मजा दे देते। वो क्या, न शुद्ध बुद्ध की ली, न शुद्ध बुद्ध की ली, न मंगल की ली, न शुद्ध बुद्ध की ली, न मंगल की ली, निकल शहर से रा जंगल की ली। अगर कोई आदमी इबादत और जिक्र करके चाहे कि मैं माल रोड पर जाऊं, जरा थोड़ा सा माल भी तो देख लूं, फ्रेश फ्रेश माल कौन सा आया हुआ है, नतीजा क्या होगा, हम इबादत के बावजूद सुकून से, अल्लाह ताला के कुर्ब से, इनायत और मेहरबानियों से मेरे प्यारे दोस्तों महरूम रहेंगे। और ये ऐसे ही है कि जैसे एयर कंडीशन चलाकर या हीटर चलाकर हम खिड़कियां खोल दें, लगा ये ऐसे ही है कि हमने अपने दिल में इबादत और अनवारात को जमा करके आंखों की खिड़कियां खोल दी, में सुकून आ नहीं सकता, वो अनवारात नहीं रहेंगे, वो भी चले जाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम हीटर चलाएं, और सुकून और आयश और राहत हासिल करना है तो मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी रोटी अल्लाह ताला, मेरे मुर्शिद का अजीब जुमला याद आया, फरमाया कि अल्लाह की शान ऐसी है कि जो फूलों में रुला देता है। बेटा बात नहीं करना, खबरदार, वरना झुलसे कर दूंगा। तो मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि अल्लाह ताला की जात ऐसी है जो फूलों में रुला सकता है और कांटों में हंसा सकता है। ये हजरत का जुमला अजीब, यानी असबाब राहत हैं, मकान, गाड़ी, बैंक बैलेंस, 6-6 लड़के भी हैं, क्योंकि हम लोग लड़कों पर फखर करते ना, और जब लड़के पैदा होते हैं तो फायरिंग हो रही है, पटाखे फाड़े जा रहे हैं और दावतें बड़ी हो रही है, और जब बेटी पैदा हुई, क्या पैदा हुई, बेटी हुई। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है। और यकीन जाने मैं मिंबर में बैठा हूं, आप लोग इस बात की गवाही देंगे, मुझे बताइए बेटियां बेटों से ज्यादा, बेटे ज्यादा मां बाप से मोहब्बत करते हैं या बेटियां? तो देखिए ना कितनी अजीब बात है, जो बिचारी हमारे लिए हमसे मोहब्बत कर रही है, हम उसकी पैदाइश पर मुंह बनाते हैं, और बेटे की पैदाइश पर जी बेटा है, फायरिंग हो रही है, पटाखे फाड़े जा रहे हैं, कितनी अजीब बात है। मेरे भाई साहब मुफ्ती तनवीर साहब ना, पिछले गुज़िश्ता हफ्ते उनकी बेटी है, उनके विलादत हुई, तो मेरे भाई साहब नाना बन गए, मुझसे भी फरमाने लगे तुम भी नाना बन गए, मैंने कहा आप असली नाना है मैं नकली नाना हूं। फिर मैंने अपने शेख की एक बात सुनाई, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझको पहले बेटी अता फरमाई। और हदीस शरीफ में आता है हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसको रिवायत फरमाती हैं कि काबिले मुबारकबाद है वो औरत जिसके पहले वहले में बेटी पैदा हो। साहब कहने लगे अजीब बात, कहने लगे जी औरत को मुबारकबाद है शौहर को तो है नहीं। मैंने कहा यार घबराते क्यों, ये मिली भगत है दोनों की, अगर मिली भगत का ही नतीजा है ना, घबराते क्यों, मुबारकबाद तुम्हें भी मिलेगी। ये बारीक नुक्ता काफी है ना, इतना समझाना काफी है, बस शरा की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला का तो मेरे शेख ने हदीस शरीफ सुनाई जब मेरे यहां बेटी की पैदाइश हुई, एक बात, और दूसरी बात फरमाई, फरमाया कि देखो अजीब नुक्ता देखिए, फरमाया कि देखो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाना थे दादा नहीं थे। बेटियां नाना बनाती हैं, बेटे दादा बनाते हैं, दादा बेटियों की बरकत से सुन्नतें गैर इख्तियारी मिलती है। क्या अजीब नुक्ता है उस्ताद, क्योंकि इंसान के इख्तियार में नहीं है ना, बेटी की पैदाइश बेटे की पैदाइश इख्तियार में तो नहीं है, औरत के इख्तियार में थोड़ी है। इसलिए बातें सासें कहती हैं अगर आपके बेटी पैदा हुई ना तो बस तुझे घर से निकाल दूंगी, ये जुल्म है, उसका क्या इख्तियार है, वो बेचारी का क्या इख्तियार है, उसने तो सिर्फ बर्तन दे दिया, जो मेहनत करनी है मर्द करे ना, वो बेचारी का क्या कसूर है। और उसी औरत को कहा जाता है, आ कितने अफसोस की बात है कि उस पर जुल्म किया जाता है ये, जबकि उसका कोई कसूर नहीं है। मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि बेटियां नाना बनाती हैं, सुभान अल्लाह, ऐसी सुन्नत जिसके हम बेबस हैं, हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन बेटी की बरकत से हम नाना बनेंगे और एक सुन्नत गैर इख्तियारी मिल जाएगी। जैसे पीर के दिन किसी की विलादत हो जाए, आप सल्लम को अल्लाह ताला ने पीर के दिन की विलादत, किसी के इख्तियार में है क्या, लेकिन अगर अल्लाह ताला अता फरमा दे तो शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला आपने अपने कर्म से एक सुन्नत गैर इख्तियारी मुझको अता फरमा दी। बेटियां बेटे बनाती, और एक बात और फरमाई, फरमाया कि देखो बेटियां बेटे लाती हैं और बेटे बेटियां लाते, यानी भले भलाए बेटे मिल जाते हैं। और बाजी दामाद कितने फरमा बरदार होते हैं, कैसा कि अपने सास ससुर का कितना ख्याल करते हैं और बीवी को भी आराम से रखते हैं, क्योंकि वाकई अजीब बात है कि एक कमजोर मखलूक की पिटाई करना, उसको मारना, औरतों को मारना, यानी ये तो बहुत ही बुजदिली है, बुजदिली। एक दुकान पे ग्राहक नहीं आए, बीवी की जाके पिटाई शुरू कर दी, ये अजीब है। होटल में कोई आया नहीं, दुकान पे ग्राहक नहीं है, तो बीवी का कसूर है क्या, वो डंडा लेके खड़ी थी सबको रोकने के लिए, गुस्सा वहां का वहां उतार दिया, ये तो ऐसा ही है। मेरे मुर्शिद ने सुना है कि एक आदमी था, उसकी किसी धोबी से लड़ाई हुई, और पहले जमाने में धोबी जो है वो मशीनें तो होती नहीं थी, अपने हाथ से बड़ी बड़ी चादरें, तो ताकत होती थी, ये चादर उठाकर पटकना, उसको धोबी पटकान बोलते हैं, उस दाव ये कुश्ती का दाव है, कैसे उठाकर जो पटकना, ये धोबी पटकान कहलाता है उर्दू के अंदर। तो उसने क्या किया कि वो धोबी थी शायद, उसने उस आदमी को उठा के वही धोबी पटकान दे मारा, वो कमर सहलाता हुआ गया, वहां दूर धोबी का गधा बंधा हुआ था, उसने गधे का कान पकड़ा और धोबी को कहता है अब मारेगा मुझे। भाई तो गधे ने क्या कसूर किया, तो हमारा भी अजीब मामला है, दुकान पे ग्राहक नहीं आया, बीवी का कान पकड़ ले जाके, उसका क्या कसूर है कि उसकी पिटाइयां कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उस बिचारी का क्या कसूर है कि उसने ग्राहक आने से रोके है क्या। ये हमारा रवैया है, ये हमारा एटीट्यूड है। और मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, सोचने की बात है, सुभान अल्लाह, फरमाया कि अगर तुम्हारी बेटी को उसका शौहर यानी हमारा दामाद आराम से रखे, तुम्हारे दिल से दुआएं निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, अल्लाह अकबर। और अगर किसी दिन बेटी रोती भी आ जाए आंसू बहा के, और अब्बा से सब इतना कह दे कि बाप अब्बा तूने मेरी किस जालिम से शादी कर दी, जो मेरे बालों से पकड़कर मेरे सर को जो दीवार पे दे मारता है, बताओ बाप के दिल पर क्या गुजरेगी, छुरिया चलेगी कि नहीं चलेगी, दिल कटेगा कि नहीं कटेगा, तो मेरे प्यारे दोस्त, जो हमारे घर में है वो भी तो किसी की बेटी है, जो हमारी बीवी है किसी की बेटी है। और हाँ, जब बीवी रोती, बेटी रोती भी आती है ना, फिर मौलवी साहब के पास आते हैं, इमाम साहब, मुफ्ती साहब के पास आते हैं, मौलवी साहब तावीज दे दीजिए, मेरा दामाद बहुत जालिम है, मांगते ना तावीज। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, कभी अपने लिए तावीज लिया कि मैं भी कैसा जानवर बन जाता हूं, इंसान वाले काम नहीं करता। फरमाया, अपने लिए भी तावीज लो, आपके गुस्से के अंदर यह इत्तदाल पैदा हो। जो पागल कुत्ते की तरह काटना, भौंकना, ये इंसानियत नहीं है। और फिर एक कमजोर भी है ना औरत, हाँ, अगर कि किसी की बीवी ताकतवर हो, जैसे किसी काउंसलर की बहन हो, या किसी मिनिस्टर की बेटी हो या बहन हो, जरा उसको तो टेढ़ी निकाह से देख के दिखा। औरत ने, एक शौहर ने बीवी को अपनी थप्पड़ मारा, उसने पूछा क्यों मारा आपने मुझे, मैंने कहा बेगम तुम्हें मालूम नहीं है, इंसान जिससे प्यार करता है उसी से ऐसा मामला करता है। उसने कहा अच्छा, उसने एक दो लगाए। उसने कहा आप क्या समझती हैं, आप क्या समझते हैं, मैं आपसे प्यार नहीं करती। ऐसी बीवी मिल गई ना, फिर पता चलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए ना, इंसानियत है, अल्लाह अकबर। और ये हुक्म आम नहीं है, ऐसा ही नहीं, ये शरीयत का मसला है। बीवियों को आराम से रखना ये शरई मसला है, ये ऐसा नहीं है कि आम बात है जी, ये शरई मसला है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सिफारिश नाजिल फरमाई, आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, मेरी बंदियों के साथ इनके साथ भलाई से पेश आओ, इनको आराम से रखो। मेरे प्यारे मुर्शिद फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है, सिफारिश है। अगर वजीर आजम कह दे, सदर कह दे, या इलाके का डीएसपी एसपी कह दे कि देखो वो जो तुम्हारी बीवी है ना, वो मेरी बेटी की सहेली है, बस सिर्फ इतना बता दे, बस ये इंफॉर्मेशन, ये जुमला खबरिया काफी होगा कि नहीं होगा। टेढ़ी निगाह से देखेगा, उसको एसपी याद आ जाएगा, वो थाना याद आएगा, वो आधी रात को उल्टा लटकाना याद आएगा। वो एक जो ना रास्ते में छत्तर आता ना, वो छित्तर याद आएंगे, तो क्या फिर क्या ना, गुस्सा भी आएगा, बर्दाश्त करेगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। अब देखिए ना, मियां बीवी, दो मियां बीवी थे, बहुत लड़ते थे आपस में, हर वक्त कुड़कुड़ कुड़कुड़ लगे रहते थे। उनके घर में, उनके पड़ोस में एक घर आबाद हुआ, वहां से हर वक्त हंसने की आवाज आती थी। तो एक दिन शौहर आया दुकान से घर पे, तो बीवी ने कहा देखो हम लोग कितने मनहूस हैं, हर वक्त लड़ते रहते हैं, और देखो बराबर घर वालों को देखो कितनी हर वक्त हंसने की आवाजें आती हैं, जाओ उनसे पूछ के आओ क्या तरीका है। अब शौहर गया, दरवाजा खटखटाया, थोड़ी देर में वो मर्द हंसता हुआ बाहर निकला। उसने कहा माशाल्लाह, पहले एक आवाज भी आई थी, और दरवाजा खुला, वो हंसता हुआ आया, माशाल्लाह, भाई साहब हम आपके पड़ोसी हैं और हम मियां बीवी हर वक्त लड़ते रहते हैं, और आपके घर से माशाल्लाह हर वक्त हंसने की आवाजें आती है, इसका क्या राज है। उसने कहा भाई क्या बात यह है कि मेरी और मेरी बीवी की लड़ाई होती है, वो बर्तन उठा के मुझे मारती है, अगर बर्तन मुझे लग जाता है वो हंसती है, नहीं लगता मैं हंसता हूं। नहीं गुजरने का यह भी एक सलीका है भाई। जैसे मेरे मुर्शिद ने सुनाया कि एक मजदूर था बेचारे, मेहनत करके, बारिश का मौसम था, पकौड़े खाने को दिल चाह, तो वो बेचारा बेसन सलाह बीवी से कहा कि चल पका, अब वो पकाती जा रही है, खाता जा रहा है, उसको गुस्सा आया, उसने बीवी ने को गुस्सा आया कि ये खाया जा रहा है, मेरे लिए छोड़ नहीं रहा। उसने वो पकौड़े तलने वाला बड़ा सा जो चमचा था उठाया, अब खाया ना मारूंगी तुझे, तो वो गुस्से में था, अब चमचे की जैसे बेचारा बेबस था। उसने कहा या अल्लाह मैं मर जाऊं, या उसने कहा क्या, या भी मैं ही मर जाऊं। मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा रवैया, बर्ताव, एटीट्यूड थोड़ा सा अगर हम अपना दुरुस्त कर ले, सुभान अल्लाह, घर सुकून से गुजरे। बस वो बर्तन मारे, खामोशी से लग जाए तो वो हंस ले, न लगे तो हम हंस ले, जिंदगी कैसे मजे से गुजरेगी। हंसी खुशी गुजर जाएगी। इसलिए मेरे मुर्शिद प्यारे शेख फरमाते हैं इनको आराम से रखो। अरे मियां घर में इतनी लज्जत मिलेगी कि बस। और अगर बाकी बात है, अगर इनको रुलाया सताया तंग किया तो सुकून मिलता है हमको, बर्बाद रहता है सुकून। आराम से रखे मजे से गुजरेगी। रही बात, एक बात मौलाना साहब आपको मालूम नहीं है, ये है ना सुधरती नहीं है, इसको इंसान बनाने के लिए हम पिटाई करते हैं। तो मैं मस्जिद में बैठा हूं, मिंबर पे हाजिर हूं, मुझे वो लोग बताएं जिन्होंने 10-10 साल 15-15 20-20 साल अपनी बीवियों की पिटाई की है और उनको इंसान बना दिया और सुधार दिया। एक मिसाल ला दे। प्यारे दोस्तों मोहब्बत की बात कुछ और होती है। इसलिए बाज़े लोग एक बात कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला, जिहाद इस्लाम का मुस्तकिल रुकून है, वो सलाखों पर है हमारे, लेकिन माफ कीजिएगा इस्लाम तलवार से नहीं फैला, आपकी अजमत सलाखों पर है हमारे, लेकिन इस्लाम अखलाक से फैला। हमारे बुजुर्गों को ये जो दीन की खिदमत, ये उनके अच्छे अखलाक की वजह से थी। अखलाकियात की बहुत बात ही कुछ और होती है दादा, बर्ताव है, रवैया है। अब देखिए ना, एक छोटी सी मिसाल है, अगर हमारी एक आदमी को मालूम है कि मेरी बेटी का मिजाज कड़वा है, वो जबान की तेज है, लेकिन उसका शौहर उसको मारता नहीं है, जैसे हमारे घर में हो, हम नहीं कहते बर्दाश्त कर लिया, ससुर का दिल खुश होगा कि नहीं होगा? कहेंगे देखो यार कितना शरीफ है ये आदमी और कितना ये रहम दिल है कि मेरी बेटी का मिजाज ऐसा है, फिर भी देखो कितना बर्दाश्त करता है। तो एक बाप के दिल में, अब्बा के दिल में इतना उसके लिए मोहब्बत आएगी तो रब्बा के हाँ उसके लिए कितना मकाम होगा, अल्लाह के लिए इसको बर्दाश्त कर ले। अब रही बात कि जी हमारे अच्छा एक अजीब है, ये भी एक अजीब बात है, 15-15, 20-20 साल बीवियों के साथ गुजार देते, 6-6, 8-8 बच्चे हो गए, और अब कहते हैं कि जी हमारी अपनी बीवी से अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुई। ये भी एक अजीब आजकल तमाशा निकला, जिंदगी गुजार दी, टोयोटा कंपनी के मॉडल भी आ गए और अब कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ही नहीं। भाई अंडरस्टैंडिंग और किस चीज का नाम है? हमारा मिजाज नहीं मिला। जैसे दो मियां बीवी हर वक्त लड़ते थे और बच्चे माशाल्लाह 9 थे ना, तुम लोग लड़ते इतने हो, बच्चे इतने, अब इतनी भी नाराजगी नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों सोचने की बात है, ये नफ्स की बहुत बड़ी बदमाशी है। रही बात अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको अल्लाह के लिए निभाए। जब मेरी शादी हुई ना मुफ्ती साहब, तो हजरत वाला ने मुझसे एक बात फरमाई, फरमाया कि हबीबुल्लाह शादी एक मरतबा होती है, अब ये वो कश्ती है जिसको तुमने पार लगाना है। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या प्यारी नसीहत फरमाई। क्यों? क्योंकि कश्ती जब चलती है ना समुन्द्र में और दरिया में, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, भंवर आते हैं, कभी लहरें तेज चलती है, कभी सुकून होता है, कभी मौजे ऊपर आ रही है, कभी कश्ती में पानी भर रहा है, अल्लाह पर कैसे कैसे मवाके मराहिल गुजरते हैं। लेकिन हजरत वाला ने नसीहत फरमा दी, हबीबुल्लाह इस कश्ती को बस पार लगाना है। सुभान अल्लाह, कैसे ही हालात हो, ऊंच हो नीच हो, आगे हो पीछे हो, बहर में फंसे, लेकिन याद रखना तुमने इसको पार लगाना है। अल्लाह पर, अल्लाह ताला मेरे प्यारे शेख को जजाय खैर अता फरमाए। इंसान है, होता है रवैया, कभी इंसान कमजोरी आगे पीछे प्लस माइनस जिसको कहते हैं ना, लेकिन फरमाया कि इसको पार लगाना है। सुभान अल्लाह, अल्लाह मेरे शेख फरमाते इसको पार लगाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो हम इबादत करके गुनाह से बचने का एहतमाम नहीं करते, दर हकीकत इसकी वजह से हमारा कल्ब जो है वो जलता रहता है और हमें इबादत के वो अनवारात नहीं मिल रहे और हमारे कल्ब को सुकून नहीं मिल रहा, हमारे कल्ब को सुकून नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। क्यों? माल रोड के चक्कर भी लगे। अब ग्राहक दुकान पे आई, अब उसको देख देख के पूछ रहे, आप कहां से आएंगे? झेलम से आएंगे? यह पूछना जरूरी है क्या जेलम से आएंगे? क्या आपके बच्चे कितने हैं? इतनी बातें करना जरूरी है क्या? सीधे सीधे काम करें, नजर नीची करके बात करें, क्या देखना जरूरी है ग्राहक को? लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये जो हम बदनजरी करते हैं, इन औरतों को देख रहे हैं, इसकी वजह से हमारे कल्ब के अंदर वो जो उनकी गलासत आती है उसकी वजह से वो इबादत के, देखिए बर्तन गंदा हो गया अब दूध डालेंगे तो क्या आलम होगा, इसलिए इसका एहतमाम करें। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि तुम खाना थोड़ा खा लो लेकिन जहर मत खाओ तो नतीजा होगा सेहत मिल जाएगी। अगर खाना तो बहुत खाया कि देसी मुर्गा भी खाया अंडे भी खा रहे हैं लेकिन साथ में जहर भी खा रहा है, सेहत बनेगी? फरमाया इबादत थोड़ी कर लो, मैं नहीं फरमाते, मैं नहीं ये कहता कि तुम इबादत ज्यादा करो, थोड़ी इबादत कर लो लेकिन खुदा के लिए अल्लाह की नाफरमानी से बचने का एहतमाम करो। फरमाया उसका नतीजा होगा अल्लाह का कुर्ब खास और ताल्लुक खास तुम्हारी जानों को मिल जाएगा। गुनाह से बचने का एहतमाम करो। तो मेरे प्यारे मुर्शिद मेरे शेख फरमाते हैं कि अपना हमको अपना बना लो करम से, हमको अपना बना लो करम से, मुल्तजम पर ये मांगे दुआएं, हमको अपना बना लो करम से। बाजे लोग कहते कि जी आप मेरे लिए दुआ करें, और दुआ की दरखास्त करना ये सुन्नत है, दुआ की दरखास्त करनी चाहिए, मुसलमान भाई से करे, कोई आलिम हो, अल्लाह वाले हो, दीन के खुदाम, एक दूसरे से जुदा ये दुआ के लिए कि दरखास्त पेश करें कि भाई आप हजरत मेरे लिए दुआ फरमाए। तो बाज़े लोग कहते कि हम कहते भाई आप भी दुआ करें, कहते जी मैं तो बड़ा गुनहगार हूं। तो मेरे मुर्शिद ने एक अजीब बात फरमाई, लगा हम अपने आप को गुनहगार समझते हैं कि जैसे दुआ ही नहीं करते, और ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि बगैर मांगे इतनी नेमतें ता फरमाई तो मांगने पर क्या कुछ ना देंगे। लेकिन एक बात और, मेरे मुर्शिद फरमाते कि देखो शैतान जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम को उसने सजदा नहीं किया और फरिश्तों ने सजदा किया, और फरिश्ते जब सजदे से उठे तो देखा शैतान अकड़ के खड़ा है, तो फरिश्ते दूसरे सजदे के में चले गए। अल्लाह ताला को ये उनकी अदा इतनी पसंद आ गई, हर रकात में हम दो सजदे करते। फरिश्ते ने सजदा किया और सजदा शैतान ने नहीं किया, अकड़ के खड़ा रहा। अभी अकड़ने पर बात आई तो हम आ रहे थे, तो कायदा यह है कि जब हम बुलंदी पर चढ़ते हैं तो थोड़ा सा झुकना पड़ता है, क्यों जरा हमारा ना चलते हुए जब इंसान जब चढ़ाई पर चढ़ता है ना तो उसको थोड़ा सा झुक के चढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं चढ़ सकता कि अकड़ के रहे, थोड़ा सा झुकना पड़ता है उसको। बस इसी तरह मौलाना से ये बात मैंने अर्ज की, मैंने कहा देखिए इंसान को जब अल्लाह ताला जिसको बुलंदी अता फरमा चाहता है तो उसको तवाजो अता फरमा देता है। कहते कोई आदमी चढ़ना चाहे और ऐसे अकड़ के चढ़े, ऐसा नहीं हो सकता, उसको झुकना पड़ेगा। तो जो लोग अपने को मिटाते हैं और अल्लाह ताला की अजमतों के सामने अपने को झुकाते हैं उन्हीं लोगों को अल्लाह ताला रफात और बुलंदी अता फरमाते हैं। और यह है उसी हदीस शरीफ के माने, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़ाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए अपने को मिटाता है लेकिन अल्लाह के लिए हो, तवाज़ो इख्तियार करे तो अल्लाह ताला उसको बुलंदी अता फरमाएंगे। तो बोलो चलो बुलंदी पर चढ़ने के लिए झुकना पड़ता है, ना तो चाहता है कि अल्लाह क्या मेरा मकाम हो जाए, तो उसको भी चाहिए अपने अंदर आजजी पैदा करे, अपने को मिटाए, अपने को नेक और बड़ा ना समझे कि मैं बड़ा हूं, मिटाए अपने को। मेरे प्यारे शेख की अजीब बात, और फरमाया कि देखो जिस शाख में फल आता है वो शाख झुक जाती है और जिस शाख में फल नहीं होता वो अकड़ के खड़ी रहती है। फरमाया कि जिस आदमी के अंदर तकब्बुर और अकड़ के अपने आप को समझे, फरमाया इसका मतलब है ये शख्स अल्लाह ताला के कुर्ब इनायत और मेहरबानियों से महरूम है। और जिसको अल्लाह ताला अपना कुर्ब मोहब्बत और मार्फत अता फरमाते हैं उसके अंदर तवाज़ो पैदा हो जाती है। लेकिन तवाज़ो के माने ये नहीं कि ऐसे झुकना, ये तवाज़ो के माने नहीं है, तवाज़ो के माने ये कि दिल से अपने को कुछ ना समझना, ये है, चाहे वह सीधा भी बैठा हो। लगे इसलिए मसला यह है कि जब नमाज में खड़ा हो तो नमाज में झुककर खड़े हो ना, यह खिलाफ है सुन्नत है, ऐसे नहीं खड़े होना चाहिए नमाज में, और ना ऐसे खड़े हो बल्कि अपनी दरमियानी हालत में खड़ा होना, बिल्कुल सीधा खड़ा हो और निगाह सजदे की जगह पर रखे, दरमियानी हालत में जैसा है बस वैसा खड़ा रहे, ना झुके और ना अकड़ के खड़ा हो, यह सुन्नत है नमाज में खड़े होने की सुन्नत। मेरे प्यारे मुर्शिद मेरे शेख फरमाते हैं हमको अपना बना लो करम से, मुल्तजम पर ये मांगे दुआएं। सारे आलम में फिर फिर के यारब, सारे आलम में फिर के यारब, नहीं, उससे पहले एक शेर और है कि सुभानअल्लाह, दोनों आलम की क्या है हकीकत, दोनों आलम की क्या है हकीकत, जितने आलम हो तुझ पर लुटाएं। दोनों आलम की क्या है हकीकत, जितने आलम हो तुझ पर लुटाएं। तेरे दर पर मेरा असर हो यारब, तेरे दर पर मेरा असर हो यारब, जान इस तरह तुझ पर लुटाएं। यानी ऐसा हो कि हमारी अल्लाह ताला की इनायत और फरमाबरदारी के अंदर हमारी जान निकले और हम ऐसे अल्लाह ताला पर फिदा हो जाएं। इधर से आगे आ जाए मौलाना। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह तुसी खैर नाल आ गए जी। अब आप कहां जा रहे हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहां आ जाए तो मैं जरा आपको और गौर से देखता रहूंगा। थोड़ा सा आगे हो जाए, ये हमारे मोहतरम बुजुर्ग है, मुफ्ती साहब से भी मुलाकात कर लें, फिर बाकी मुलाकात उधार है। तो मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि तेरे दर पर मेरा असर हो यारब, तेरे दर पर मेरा असर हो यारब, जान इस तरह तुझ पर लुटाए। यानी हमारी जिंदगी इस तरह गुजरे कि हम आपको राजी और खुश रखें हर लम्हा हर सांस। यहां तक कि अगर माल रोड पर निकले किसी जरूरत से, अब वहां हसीनों का माल नजर आ रहा है और दिल चाह रहा है इनको देख लें, लेकिन अपने दिल को तोड़ दें, लेकिन अल्लाह के कानून को ना तोड़े, बस यही अल्लाह ताला की अब पर अपनी जान को लुटाना है। एक अजीब बात देखिए, जब जहाज चलता है ना तो जहाज चलने के बाद रनवे पर आता है, उसको टैक्सी करना बोलते हैं। उसके बाद रनवे पर आने के बाद जहाज एकदम से तेज दौड़ता है। जब जहाज तेज दौड़ते दौड़ते जो रफ्तार उसको हासिल करनी होती है उस रफ्तार पर पहुंचकर फिर वो जहाज उड़ता है। इससे एक मसला सुन लीजिए, अल्लाह ताला ने फरमाया फफिरू इलल्लाह, लिहाजा जहां हसीन हो वहां से भी भागे, लेकिन भागना ऐसा नहीं है कि जो ऐसा भागेगा उसका जहाज उड़ नहीं सकेगा, वो जमीन पर रह जाएगा। अगर कैसा भागे, जैसे जहाज एकदम से रनवे पर तेज दौड़ता है, एकदम से कैसे बिल्कुल फुल स्पीड में है ना, फिर उसके बाद बस वो टेक ऑफ कर लेता है। अगर जो लोग चाहते हैं कि इन हसीनों से नजर बचाकर इनके रूहानियत के जहाज टेक ऑफ कर जाए, उड़ जाए आसमानों पर, तो इनको भी चाहिए जहां गैरुल्लाह वहां से भागे। कैसे? ऐसी वलीमे की दावत है जहां पर मिस गैदरिंग शुरू हो गई, अल्लाह की कोई नाफरमानी शुरू हो गई, या कोई ऐसी जगह है जहां अल्लाह की नाफरमानी हो, तो अब वहां से फिरार इख्तियार करना जरूरी है। दादा मेरे मुर्शिद ने फरमाया यहां तक के अगर मुर्गी की टांग तुमने रखी और मुर्गी की टांग को मुंह में रख लिया और उस वक्त अल्लाह की नाफरमानी शुरू हो गए, मुर्गी की टांग वापस प्लेट में रखो और फौरन वहां से भागो, वहां ठहरना जायज नहीं है। अब जैसे जहाज एकदम से दौड़ता है, फरमाया वैसे एकदम से दौड़ो। इसका क्या नाम है? फफिरू इलल्लाह। और मेरे मुर्शिद ने फरमाया अगर तुम फिरार इख्तियार नहीं करोगे इन हसीनों से कि जी माल रोड पर है, सीजन है, पता चले कैसे कैसे हैं, हसीन है, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं, मुख्तलिफ इलाकों से हसीन आए हुए हैं, जरा हम मुख्तलिफ डिजाइनों को देखेंगे। तो मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि जो डिजाइन को रिजाइन नहीं देगा वो अल्लाह ताला के कुर्ब के खजाइन से महरूम रहेगा। जो डिजाइन को रिजाइन नहीं देगा वो अल्लाह ताला के कुर्ब के खजाइन से महरूम रहेगा और राम नारायण हो जाएगा। फरमाए डिजाइन को क्यों देखते हो, डिजाइनर को क्यों नहीं देखते? अब देखिए कितने हसीनों को देखेगा। और फिर फरमाए अजीब बात देखिए, अब फिरार पर बात देखिए, फरमाए कि हजरत की तकरीर है फिरार की दो किस्में है, एक है फिरार तबाई और एक है फिरार शराई। फिरार तबाई क्या है कि आज वो हसीन 16 साल की लड़की और 16 साल का लड़का हसीन मालूम हो रहे हैं, उनको शॉल भी गिफ्ट में दी जा रही है, उनको मोबाइल कार्ड दिलाए जा रहे हैं, उनके मोबाइल में बैलेंस ट्रांसफर किया जा रहा है, उनको नए नए मोबाइल गिफ्ट किए जा रहे हैं, उनको SMS किए जा रहे हैं कि ईद मुबारक हो, रमजान शरीफ मुबारक हो। मुहर्रम मुबारक हो, मुहर्रम का शरबत भी मुबारक हो। फरमाए कि वो 16 साल का गुड्डा जब 60 बरस का बुढ़ा हो जाएगा, और वो 16 साल की गुड़िया जब 60 बरस की बुढ़िया हो जाएगी, अब तो उसको मुफ्त का मुहर्रम का शरबत भी नहीं पिलाएंगे। ना पहले जिसको जो ग्राहक जवान ग्राहक आई तो जहां खुद ही आइए मोस्ट वेलकम, आइए तशरीफ लाइए, आइए आइए, वो जाओ जी दूध पत्ती चाय लेके आओ इलायची मार के, गर्मी है तो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाई जा रही है, और बेचारी बुढ़े को या बुढ़िया को कुछ नहीं मिल रहा। उनसे पूछ रहे हैं आप चाय तो नहीं पियेंगे ना, खाना तो खा के आए हैं ना, इसका मतलब खिलाना नहीं है ना, चाय तो नहीं पियेंगे इसका मतलब पिलानी नहीं है। वो एक आदमी था, एक मेहमान गया अपने मेजबान के यहां, तो मेजबान ने पूछा क्या नोश फरमाएंगे, ठंडा या गर्म? गर्मी हो रही है, काम करेंगे ठंडा पिला दें। देखा अच्छा ठंडे में बोतल चलेगी या लस्सी? उन्होंने कहा जी बोतल तो लस्सी देसी है, लस्सी पिला दें। उन्होंने कहा लस्सी जो है वो फीकी हो, नमकीन हो या मीठी? उन्होंने कहा मीठी क्या पियेंगे, नमकीन पिला दें। उसने कहा अच्छा कांच के गिलास में पियेंगे स्टील के गिलास में? उसने कहा जी स्टील के गिलास में नहीं, कांच के गिलास में पिला दें। उसने कहा कि कांच के गिलास फूल वाला हो या बगैर फूल वाला? उसको गुस्सा, उसने कहा दफा करो नहीं लस्सी पीनी। उसने कहा असल में मैंने पिलानी भी नहीं थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अब वो मारूमी फरमाते हैं, ये बात ऐसी नहीं है, मारूमी फरमाते हैं कि जब बुढ़ी फकीर नहीं आती है ना तो उसको डांटते हट यहां से, देखते नहीं क्या करे आगे, जब बहुत हुआ तो पैसे दे ले चल दिया हट जा दफा हो जा से आ गई गाह को टाइम, और जवान फकीर नहीं आ गई, हाय बेचारी हाय हाय जवानी में बेवा हो गई। अब उससे बड़ी हमदर्दी आ रही है, यानी जो बुढ़ी बुढ़ी बेवा हो जाए उसमें हमदर्दी नहीं आती, और जवान बेवा से तो सभी हमदर्दी करते। ये क्या है? फरमाए नफ्स की शरारत है, ये शरारत है नफ्स की, कि जो तुम ये काम कर रहे हो ये अल्लाह ताला की नाफरमानी जो कर ही रहो। लेकिन अजीब बात है, अल्लाह अकबर क्या प्यारी बात फरमाई, फरमाई ये हसीन आज जो गुड़िया और वो गुड्डा लग रहा है, जब ये 60 वर्ष की बुढ़िया हो जाएगी, दांतों को निकाल के उस पर टूथब्रश, 12.5 नंबर का चश्मा लगाए हुआ, हाथ में राशा और कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, उनके बालों पे गालिब सफेदी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, फरमाया फिर क्या आलम होगा, आ फिर तुम भागोगे नहीं भागोगे। फरमाया कि उस वक्त इन हसीनों से जो तुम नजर बचा रहे हो, उस वक्त तो काफिर और यहूदी भी नहीं देखता। बताइए बुढ़ी को नसरानी यहूदी काफिर देखता है या बुढ़े को देखता है? पूछता है उसको, फरमाया कि जो काम काफिर ने किया वही काम तुमने किया तो क्या फर्क हुआ। इस फिरार का क्या नाम है? इस फिरार का नाम है फिरारे तबाई। क्या मतलब? अब उसको देखने को दिल नहीं चाह रहा, अब तबीयत नहीं चाह रही, मजा नहीं आ रहा उसको देखने में। इस फिरार का नाम क्या है? फिरारे तबाई। अब तबीयत उबता गई, अब वो हुस्न नहीं रहा, जिस चेहरे जिस नमक पर मरे थे वो नमक नहीं रहा, जिस नमक पर मरे थे वो नमक नहीं रहा। तो इस फिरार का नाम क्या है? फिरारे तबाई। और फरमाया एक है फिरारे शराई। फिरारे शराई क्या है? हमारे जज्बात है, मौका है, माल है, ताकत है, तन्हाई है, और हुस्न भी तैयार, मान लो वो भी तैयार गुनाह के लिए, और वो हसीन भी आला। इसलिए हदीस शरीफ में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि रजुलुन तलबतहु जातु मनसिबिन व सिफातिन फकाल इन्नी अखाफुल्लाह। कैसा शख्स जिसको एक आला सिफात खूबसूरत आला खानदान वाली औलत इशारा करे और वो यही कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूं, तो ऐसे शख्स को कयामत के दिन अर्श का साया मिलेगा। बताइए मौका है, मौका है, माल है, वक्त है, जवानी है, ताकत है, सब कुछ है, लेकिन कहता है नहीं मैं अल्लाह से डरता हूं, कल अल्लाह ताला जिंदगी भर कोफ्ते बिरयानियां खाया किया, जिंदगी भर कोफ्ते बिरयानियां खाया किया। एक दिन पूछेगा मालिक, हाँ बता क्या क्या किया, क्या करेंगे। और फिर थोड़ी देर की हराम लज्जत की खातिर से अपने मालिक और पालने वाले को नाराज करना, फिर गुर्दे में पथरी आएगी। उस वक्त हम कहते हैं, या अल्लाह बस हमारे गुनाह को माफ फरमा दे, अजाब किस किस तरीके से हमारे मुल्कों के ऊपर आ रहे हैं। लाहौर में आप देखें डेंगू का मरज क्या आलम है, सिंध में देखें इतनी तबाही हुई है कि अल्लाह की पनाह 70 लाख से ज्यादा इंसान मुतासिर हुए हैं। हमारे शेख के साथ पोते मौलाना इसहाक साहब नौकोट की तरफ तशरीफ ले गए थे, फरमाते कि मैंने खुद देखा, खुद उन्होंने फरमाया इतनी मोटी मोटी बारिश की वो पानी के कतरे, इतने मोटे मोटे, फरमाया हमारे सामने बारिश हुई और कहते फरमाया कि ऐसी बारिश हमने नहीं देखी। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों मारूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इब्तिलायत अल गयास, इब्तिलायत अल गयास, कि अल्लाह हम आपकी इब्तिला से आपकी आजमाई से हम पनाह मांगते हैं, फरियाद करते हैं। क्यों? अज इब्तिलायत शुज़ुकूर चू इनास, शुज़ुकूर अज इब्तिलायत चू इनास, के बड़े बड़े मर्द अल्लाह ताला के इब्तिला और इम्तिहान के आगे औरतों से भी बदतर साबित होते। हम लोग इसका तहम्मुल नहीं कर सकते कि हमारे गुर्दे में पथरी पैदा हो जाए, तहम्मुल कर सकते हम लोग इसके दाम, हमें नजला हो जाए क्या आलम होता है, एक नजले को हम बर्दाश्त कर सकते हैं भाई। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों अल्लाह ताला से दर हकीकत हम अल्लाह ताला की नाफरमानी करके अल्लाह ताला से बगावत कर रहे हैं हम, क्या और हमारा तहमुल नहीं है, अगर हमारी रोटी बंद हो जाए क्या आलम होगा। इसलिए अल्लाह ताला से आफियत मांगे और अल्लाह ताला की फरमा बरदारी से हम लोग तौबा कर लें, क्योंकि हम इसका तहमुल नहीं कर सकते। और फिर ऐसा एक जमाना आने वाला है कि गुनाह की ताकत खत्म हो जाएगी, तब क्या आलम होगा। देखो अगर जिंदगी है बुढ़े होंगे कि नहीं होंगे, गुनाह की ताकत रहेगी। अगर उस वक्त हम गुनाह से तौबा करें क्या हमें मिलेगा, क्या हमें इनाम मिलेगा। अगर जीते जी ताकत होते हुए अल्लाह ताला से वफादारी के जज्बे के तहत गुनाह से मेरे दोस्तों फिरार इख्तियार कर लें, तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला का कुर्ब खास, और अल्लाह ताला मेरे मुर्शिद फरमाते हैं गर्दनों से गुलामी का तौग निकाल कर हमारे सरों पर अपनी दोस्ती और विलायत का ताज सजा देंगे। इसलिए मेरे मुर्शिद ने फरमाया वली अल्लाह होने की निशानी पगड़ी पहनना और तहज्जुद पढ़ना, अब इशराक और अवाबीन पढ़ना, ये वली अल्लाह की निशानी नहीं है। फरमाया दोस्ती और विलायत की निशानी यह है कि गुनाह से बचने का एहतमाम करें, यह निशानी यह है सत्य, गुनाह से बचने का एहतमाम करें। फिर एक वक्त ऐसा आने वाला है गुनाह की ताकत नहीं होगी, जब बुढ़ापा या मरेंगे नहीं हम लोग के नहीं, क्या आलम होगा। उस वक्त कोई मुर्दा गुनाह कर सकता है, अब मुर्दा ऐलान करे कि मैं एक मुट्ठी दाढ़ी रखूंगा, कोई फायदा होगा, कर सकते हैं। अब मुर्दा कह रहा है मैं किसी हसीन को नहीं देखूंगा, अब मेरा जनाजा माल रोड पर से लेकर जाओ, अब मैं किसी हसीन को नहीं देखूंगा। अगर हम जीते जी अल्लाह ताला की फरमा बरदारी इख्तियार करके गुनाहों को छोड़ दे, तो उसके नतीजे में मेरे दोस्तों अल्लाह ताला की तरफ से इतनी इनायत और मेहरबानी होंगी कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तथा हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला की फरमा बरदारी की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला रात को बारिश अता फरमाएंगे, ऐसे वक्त जब सो रहे मखलूक सुबह उठेंगे तो उस बारिश के आसार और निशान नहीं होंगे, ये पता चलेगा कि हाँ बारिश हो रही हुई है। लेकिन उसकी जो आजकल आलम ही होता है कि बारिश क्या है, हमारे अजाब हो जाता है, जैसे पिछले साल का सैलाब था और इस साल की भी जो है हमारे कराची में यकीन जाने ऐसी बारिश हुई कि मैं अपनी मेरी तो जिंदगी बहुत छोटी सी है, कम उम्र हूं, लेकिन आलम यह है मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी बारिश हमने कराची के अंदर नहीं देखी। मैंने 120 मिलीमीटर बारिश, ये बहुत ज्यादा बारिश होती है, 120 मिलीमीटर कराची में ऐसी बारिश नहीं होती। मेरे प्यारे दोस्तों आ मेरे प्यारे मुर्शिद मेरे शेख फरमाते हैं कि तेरे दर पर मेरा असर हो या रब, जान इस तरह तुझ पर लुटाए, और सारे आलम में फिर फिर के या रब तेरा दर्द मोहब्बत सुनाए, सारे आलम में फिर फिर के या रब तेरा दर्द मोहब्बत सुनाए, और तेरा दर्द मोहब्बत सुनाकर सारे आलम को मजनू बनाए, اور محبت کا درد کیا ہے؟ وہ یہی کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ہمارے سینوں میں پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے دل کو توڑ دیں لیکن اللہ کے قانون کو نہ توڑے. یہی درد محبت ہے. درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائے، اور سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائے. سبحان اللہ. آپ کی معرفت اور آپ کی عنایت و مہربانیاں، آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. یہ ہے میرے پیارے دوست کہ جن کے قبضے کے اندر ہماری روزی کا گھٹانا بڑھانا کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں. صحت اور بیماری کس کے قبضے میں؟ ایمان پر خاتمہ کس کے قبضے میں؟ اللہ پر. کتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ کے قبضے میں، تو اس مالک کو ناراض کر کے ہمیں ملے گا کہ بیٹا ارے میاں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کشتی کیوں شروع کر دی؟ اگر لڑنا ہی ہے تو سامنے آؤ، ذرا ہم بھی دیکھیں. آرام سے بیٹھو ورنہ دونوں کانوں کے درمیان میں ناک کر دی جائے گی. نہیں پتا نا، وہ ویسے ہی درمیان میں ہے نا. میرے پیارے دوستو، اللہ کی محبت کا درد یہ ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں جہاں میں سارے عالم میں جاؤں میں یہی بات پیش کروں کہ میرے پیارے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن جائے. دیکھیں قاعدہ یہ ہے، ہمارا بچہ جب ہماری فرما برداری کرتا ہے تو بغیر مانگے ہم اس کو کتنے انعامات دیتے ہیں، اور جب نافرمانی کرتا ہے تو کیا عالم ہوتا ہے، کتنا غصہ آتا ہے، دل چاہتا ہے اس کی روٹی بھی بند کر دے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر. ربا کی فرما برداری سے اللہ تعالیٰ کی نعمت و مہربانیاں. میرے دوست حدیث قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، میں یتقی اللہ یجعل له مخرجا، جو تقوا سے رہے گا گناہوں کو چھوڑ دے گا میں ان کو ہر مصیبت سے مخرج یعنی ایگزٹ عطا کر دوں گا. اور وہ یرزقو من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے اس کو رزق دوں گا کہ اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا. اس پر ایک واقعہ سنیے. ہندوستان کے شہر الہ آباد کے اندر حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے. وہ حضرت کا قیام وہاں تھا، شاہ وسیع اللہ صاحب. اور یہ عجیب ہے پتہ ہے، ان کا ایک عجیب معاملہ وہ بھی سن لیں. ایک دفعہ کوئی بات چل رہی تھی تو مریدین تشریف فرماتے ہیں، مریدین اور شاگرد. تو مریدین نے کہا کہ حضرت آپ کی کوئی قبر پر بات چلی کہ فلاں جگہ قبر ہوگی اور فلاں جگہ یہ ہوگا. تو وہاں شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تم قبر کی کیا بات کرتے ہو، پتہ نہیں تم کو میری قبر پر مٹی ڈالنا بھی نصیب ہوگی کہ نہیں. یہ بات وہاں شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمائی، اور یہ شعر پڑھا، میری تربت پر پھول چڑھانے والو، میری تربت پر پھول چڑھانے والو، تم سے تو مٹی بھی نہ ڈالی جائے گی. یہ حضرت نے شعر پڑھا، بات آئی گئی ہوگی، مریدین بھول گئے، حضرت خاموش. یہ اللہ والوں کی جو بات زبان سے نکلتی ہے وہ بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. حضرت حج کو، حج کی حاضری تھی، بحری جہاز سے اس زمانے میں سفر ہوتا تھا، 70 کے زمانے کی بات ہے. بحری جہاز پہ سفر تھا، راستے میں حضرت کی طبیعت بگڑ گئی اور اللہ کی شان موت کا وقت آیا، انتقال فرما گئے. جہاز والوں نے جدہ رابطہ کیا، کہ بھائی ایسے ایک بڑے عالم ہیں، ایک اللہ شیخ اللہ والے، ان کے لیے قبر کی اجازت دی جائے. تو وہاں جدہ والوں نے منع کر دیا کہ نہیں، اجازت نہیں ہے. بہرحال دوبارہ رابطہ کیا، وہی جواب آیا. اب مجبور ہو گئے کہ اب لاش کو اتنے دن کہاں لے کر جائیں، پھر وہ اجازت نہیں دیں گے. تو انہوں نے کیا کہ تابوت کے اندر وزنی پتھر وتھر رکھ کر حضرت کو سمندر برت کر دیا، سمندر میں ڈالا. اور اللہ کی شان دیکھے، ادھر حضرت کو سمندر میں ڈالا، ادھر جدہ سے خبر آئی اجازت ہے کہ ان کی قبر بنا سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے، میری تربت پہ پھول چڑھانے والوں، تم سے تو خاک بھی نہ ڈالی جائے گی. آہ پیارے دوستوں، میرے شیخ کا یہ درد ہے. فرماتے دیکھو، اگر تم چاہے عبادت تھوڑی کر لو لیکن گناہ سے بچنے کا اہتمام کرو، پھر دیکھو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم کو کیا عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اپنا قرب اور تعلق خاص نصیب فرما دیں، اور ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیں.
اور ہماری اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا دے. ایک وقت آنے والا ہے میرے دوستو ہماری بھی آنکھیں بند ہو جائیں گی, کچھ پتا نہیں ہے, کسی کے اختیار میں نہیں ہے. زندگی, میرے مرشد فرماتے ہیں زندگی کا عجیب ہے ویزا, زندگی کا عجیب ہے ویزا, کب بلا لے خدا نہیں معلوم. ہماری زندگی کا ویزا کب ایکسپائر ہو رہا ہے, کب ختم ہو رہا ہے, کس کو پتا, مولوی بھی نہیں بتا سکتا. اور اس میں توسیع بھی ہے ناممکن, ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی, اس میں توسیع بھی ہے ناممکن, اور اہمیات کیا نہیں معلوم. کب جا ہمارا ڈپارچر ہوگا دنیا سے, ہم کب جائیں گے کچھ پتا نہیں. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے پہلے اللہ کو راضی کر لو. آہ وہ بس یہی میرے شیخ کا درد ہے. فرماتے سارے عالم میں یہی اختر کی آہوف ہوا, چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے. اللہ کے لیے تھوڑے دن اپنی حرام تمناؤں کا خون کر لو, گناہوں کو چھوڑنے کی تکلیف تھوڑے دن برداشت کر لو بس. فرمایا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو ایسا پیار, ایسی عنایت و مہربانیاں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گردن سے غلامی کا توق نکال کر تم کو اپنا ولی اور دوست بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے تو ماں شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ شخص جو ہے حضرت سے بیعت تھا, ایک گھی کا تاجر تھا, ماں شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید گھی کا تاجر تھا. ایک ہندو بنی آیا, یہ 70 کے زمانے کی یہ بھی بات ہے, میرے مرشد نے واقعہ سنایا, ہندو بنی آیا, اس نے 20,000 روپے دیے اس زمانے میں, 20,000 روپے دیے کہ مجھے فلا فلا گھی چاہیے. انہوں نے پیسے لیے گھی تولنے لگے, جیسے گھی کو ترازو پر رکھا اذان کی آواز آ گئی, بس گھی کو اتارا, پیسے نکالے اور ہندو لالے کے ہاتھ میں دیجیے, لالا جی یہ لو پیسے واپس. اس نے کہا کیوں جناب یہ کیا؟ اس نے کہا لالا جی اذان کا وقت ہو گیا, بس اب میں دکان بند کروں گا. کہا بھائی میں اتنا آیا ہوں دور سے اور تم سے لے رہا ہوں. کہا لالا میرا اصول ہے بس. کہا لالا آپ گھبرائے نہیں, آپ کو ذہنی سامان برابر کی دکان سے بھی مل جائے گا, مارکیٹ میں بہت دکانیں ہیں, یہ سودا آپ کو وہاں سے مل جائے گا. اور یہ کہہ کر اس کو پیسے دیے ہاتھ میں رکھے اور فوراً شٹر گرایا اور مسجد تشریف لے گئے. میرے پیارے مرشد میں شیخ فرماتے ہیں ظہر کا وقت تھا, ظہر کی سنتیں وغیرہ پڑھ کے جب دیر سے آیا دیکھا ہندو لالا دکان کے سامنے بیٹھا ہے. لالا جی کیا بات ہے, یہ دکانیں تھی آپ نے سودا نہیں لیا؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں لیا. کیوں؟ کہا میں نے سوچا کہ جو بندہ جو شخص اپنے اللہ کا اپنے بھگوان کا اتنا فرما بردار ہے وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے بن کے دیکھو, من کان للہ کان اللہ لہ, تم اللہ کے بنتے بن کے تم بن کے تو دیکھو, پھر اللہ تعالیٰ اپنی عنایت و مہربانی کی کیسی بارش تم پر فرماتے. فرماتے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو واللہ ایسا سکون اطمینان عطا فرماتے ہیں کہ ان کے قلب کے اطمینان کا تو کیا عالم ہوگا, ان کے پاس کے بیٹھنے والوں کے دلوں میں اتنی خوشیاں راحت اطمینان ہوتا ہے کہ بس بیٹھنے والوں کا یہ عالم ہے تو ان کے قلب کا کیا عالم ہوگا. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب خاص اور تعلق خاص عطا فرما دے. دعا کر لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحبہ و بارک وسلم. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اور اے کریم مالک میرے پیارے مرشد میرے شیخ کے صدقے میں ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجیے. ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجیے. اے کریم مالک ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجیے, ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجیے, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے. اے کریم مالک اپنے کرم سے ہم سب کو رزق حلال عافیت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجیے. اور یا اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے قرب اپنی محبت ایمان اور یقین کا ایسا مقام عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ एक सांस आपकी नाफरमानी में ना गुजारे। ये अल्लाह अपने करम से हमारे दिलों को बदल दीजिए, हमारी गुनाह पसंदी की आदत को अपनी फरमा बरदारी की आदत से तब्दील फरमा दीजिए। ए अल्लाह ए करीम मालिक, हम तो अपनी जान पर रहम नहीं करते, जुल्म करते गुनाह करके। ए अल्लाह आप अपने करम से हमारी जानों पर रहम फरमा दीजिए, हम सबको अपना फरमा बरदार 100% हम सबको अपना बना लीजिए। और ए करीम मालिक अपने करम से हमें शरीयत और सुन्नत के मुताबिक और हमारे बुजुर्गों के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारी बहुत सारी हाजात है, जरूरियात है, अपने करम से हमारी तमाम जायज हाजतों को पूरा फरमा दीजिए और अपनी खास रहमत हमारी जानों पर फरमा दीजिए। सलामती ईमान सलामती आजा के साथ दुनिया में रखिए और सलामती ईमान सलामती आजा के साथ दुनिया से ले जाइए। और या अल्लाह जो बातें पेश की गई अपने बुजुर्गों की बातों को नकल किया, या अल्लाह ताला हमारे इस नकल करने को सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए और हमारी दीनी तरक्की का इसको जरिया फरमा दीजिए। अपना अपनी मोहब्बत का जरिया बना, अपनी मार्फत का और ताल्लुक मा अल्लाह और निस्बत मा अल्लाह, अपनी दोस्ती और विलायत का इसको जरिया बना दीजिए। और या अल्लाह ताला अपने करम से हमारी खताओं को माफ फरमा दीजिए। रब्बना तकब्बल मिन्ना।